दोस्तों, जो संदेश आप सुनेंगे वो सीक्रेट चर्च की तरफ से है और ये ब्रुक हिल्स चर्च के पास्टर डॉक्टर डेविड प्लॉट की शिक्षाओं पर आधारित है।
यशाया नामक पुस्तक नए विश्वासी के लिए आवश्यक जानकारी। यशाया शब्द का अर्थ होता है यहोवा उद्धार करता है। यहोशू और ईशु नाम का अर्थ भी यही होता है, जैसा कि हम नए नियम में देखते हैं। यशाया की समय अवधि 760 से लेकर 680 ईसा पूर्व मानी जाती है। समय अवधि पर ध्यान देते रहना लाभदायक होता है, इसीलिए हमेशा कालक्रम का ध्यान रखिए। जिस वर्ष इजरायली लोग अशूरी साम्राज्य द्वारा बंदी बनाकर ले जाए गए, उस वर्ष को याद रखिए। वो था ईसा पूर्व सन 722। जिस समय यशाया ने इसराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी की थी कि इजरायली लोग अशूरियों द्वारा बंदी बनाए जाएंगे, उस समय वो इसराइल में रहा करता था। अब जरा ऐतिहासिक स्थिति पर नजर डालें। यशाया अशूरी साम्राज्य द्वारा इसराइल के विनाश की और बेबीलोन साम्राज्य द्वारा लोगों को बंधुआई में ले जाने की भविष्यवाणी करता है। उसने कहा कि सारी जातियां परमेश्वर के न्याय दंड के अधीन है और इसराइल पर भी दंड आ पड़ेगा, पर परमेश्वर उद्धार भी करेगा। संपूर्ण पुस्तक में इन्हीं दो मुख्य विषयों पर चर्चा पाई जाती है। अध्ययन के लिए व्यवहारिक परामर्श। इस पुस्तक में दो मुख्य भाग पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर ये पुस्तक एक पुस्तक बनती है, जिसे मैं छोटी बाइबल के नाम से पुकारता हूं। जी हाँ, मैं यशाया की पुस्तक को एक छोटी बाइबल कहता हूं। इसका कारण यह है कि संपूर्ण बाइबल में 66 पुस्तकें पाई जाती हैं और यशाया की पुस्तक में भी 66 ही अध्याय पाए जाते हैं। यशाया की पुस्तक के पहले अध्याय से 39 अध्याय तक का पहला भाग हमें परमेश्वर के न्याय दंड के विषय में बताता है, जो शीघ्र ही परमेश्वर के लोगों पर पड़ने वाला था। इन 39 अध्यायों में इसराइल के पापों के परिणामों का और परमेश्वर के दंड पड़ने का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जैसे ही आप इस पुस्तक के 40वें अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। दंड की जगह शांति की बातें शुरू हो जाती हैं। आवाज का टोन भी एकदम बदल जाता है और शांति का सुर सुनाई देने लगता है। परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। इस प्रकार हम अध्याय 40 से 66 तक आशा का संदेश पाते हैं। ये 27 पुस्तकें जो इस दूसरे भाग में पाई जाती हैं, वे नए नियम की पुस्तकों के समान हैं। ये हमें अनुग्रहकारी व दयालु दास के और शांति देने वाले परमेश्वर के विषय में बताती हैं। वर्तमान का दंड और भविष्य की आशा, ये बड़ी रोचक और अद्भुत बात है जो मुख्य बात हम यशाया की पुस्तक में देखते हैं। वही बात संपूर्ण बाइबल में भी प्रकट होते हुए हम देख सकते हैं। यशाया की पुस्तक के 4 मुख्य विचारों पर ध्यान दीजिए। पहला, परमेश्वर इसराइल का पवित्र परमेश्वर है। ये एक ऐसा वाक्यांश है जो 30 बार विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। वो स्वयं पवित्र है, इसीलिए चाहता है कि उसकी प्रजा भी पवित्र बने। दूसरा, इसराइली जाति परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। यशाया 62 अध्याय 12वां पद। इस पद में हम एक तीसरा संबंध देखते हैं। परमेश्वर इसराइल का पवित्र है और उसकी प्रजा भी पवित्र प्रजा है। तीसरा विचार, यरूशलेम परमेश्वर की पवित्र नगरी है। यशाया 48:2। वो एक पवित्र पर्वत भी है। यशाया 11:9 और 27:13 पद। हम यरूशलेम को परमेश्वर की पवित्रता के एक केंद्रीय स्थान के रूप में या शीर्ष स्थान पर देखते हैं, जो मंदिर में दिखाई देती थी। चौथा विचार, परमेश्वर अन्य जातियों को अर्थात देश देश के लोगों को बुलाता है कि वे उसकी आराधना करें। यशाया 2:2 और 56 का 7वां पद। यशाया 56 अध्याय में हम जाति जाति के लोगों पर ज्यादा जोर देते हुए देखते हैं। यशाया की पुस्तक में हम मसीह संबंधी विस्तृत जानकारी पाते हैं, उसका जन्म। यशाया के 7वें अध्याय के 14वां पद हमें बताता है कि उसका जन्म कैसे होगा। दूसरा, उसका जीवन। अध्याय 61 के पद पहले और दूसरे में यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18वें पद में प्रयोग करते हुए कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब तीसरा यानी उसकी मृत्यु। यशाया की पुस्तक 52 अध्याय के 13 पद से लेकर 53 अध्याय के 12वें पद तक हम ये पाते हैं। यशाया में अनेक अध्याय ऐसे पाए जाते हैं जो मसीह को दुख उठाने वाले दास के रूप में चित्रित करते हैं। उनमें 52 व 53 अध्याय मुख्य हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब अंत में उसका जी उठना, ये हम पाते हैं यशाया 55 अध्याय के 3रे पद में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यशाया की पुस्तक मसीह के संबंध में पहले से ही विस्तृत जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है। यिर्मयाह की पुस्तक नए विश्वासियों के लिए मुख्य जानकारी। यिर्मयाह शब्द का मूलतः अर्थ होता है यहोवा नियुक्त करने वाला या यहोवा बुलाता है। अध्याय 1 में परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाते हुए कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इस पुस्तक की काल अवधि 626 से 586 ईसा पूर्व है। इस पुस्तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहूदा राज्य के अंतिम 40 वर्ष हैं, जबकि बाबुल द्वारा यहूदा राज्य नाश किया गया। याद रखिए कि यहूदा राज्य की राजधानी यरूशलेम का भव्य मंदिर बाबुल द्वारा 586 ईस्वी पूर्व में नष्ट किया गया था। उसी समय यिर्मयाह की मृत्यु भी हो गई थी। 40 वर्ष तक वो भविष्य की ओर देखता रहा। उसे पता था कि 586 ईसा पूर्व तक मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए वो बार बार लोगों को पापों से पश्चाताप करने और परमेश्वर की वाचा का पालन करने की पुकार लगाता रहा। पुस्तक के मुख्य अध्याय। इस पुस्तक का 7वां अध्याय मंदिर का प्रवचन कहलाता है। यिर्मयाह लोगों का सामना करते हुए कहता है, मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए और आगे ना बढ़े। ये वचन हम पाते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में। इस पुस्तक का 31वां अध्याय भी एक मुख्य अध्याय है, जो नई वाचा के संबंध में बताता है। यिर्मयाह पुराने नियम की वाचा की तुलना में नई वाचा का परिचय देते हुए कहता है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की ये वाणी है, जब मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, उस वाचा के समान नहीं जिसे मैंने उनके पूर्वजों से उस दिन बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिश्र देश से बाहर निकाल लाया था। 31 अध्याय उसका 31 से 34 पद। व्यवहारिक परामर्श। बाइबल की सबसे लंबी पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक है। कुछ लोग भजन संहिता को सबसे लंबी पुस्तक मानते हैं। भजन संहिता में अध्याय सबसे अधिक हैं, शायद इसीलिए वे इसे लंबी पुस्तक मानते हैं। लेकिन वास्तव में यिर्मयाह सबसे लंबी पुस्तक है। इसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाना बड़ा ही सरल है। संपूर्ण पुस्तक में कभी तो स्वयं यिर्मयाह की व्यक्तिगत बातें पाई जाती हैं, तो कभी देश में होने वाली घटनाओं का जिक्र किया जाता है, जैसे उसकी बुलाहट के बारे में अध्याय 1, देशों के बारे में यहूदा को संदेश यिर्मयाह 2 से 33 अध्याय तक। व्यक्तिगत बातें, यिर्मयाह पर पढ़ने वाले व्यक्तिगत दुख, यिर्मयाह 34 से 45 अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप इन पर विशेष ध्यान दें। परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते यिर्मयाह स्वयं को परमेश्वर की प्रजा के साथ सम्मिलित करता है। वो केवल संदेश ही नहीं देता, पर संकटों में जो लोगों पर आने वाला था, वो उन संकटों में उनके साथ संभागी भी होता है। यिर्मयाह के 46 से 51 अध्याय में हम पाते हैं विभिन्न देशों के लिए संदेश, व्यक्तिगत बातें, परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह का बचाव। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते समय हम एक विशेष बात ये देखते हैं कि इसमें यिर्मयाह के माध्यम से स्वयं परमेश्वर का हृदय प्रकट होता है कि वो अपने लोगों के प्रति कितना चिंतित रहता है। आप देखेंगे कि जब परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में पाप देखता है तो उसे कितनी पीड़ा होती है। यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है क्योंकि वो उसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव करता था जिस प्रकार की पीड़ा का अनुभव परमेश्वर करता है। वो केवल लोगों के पापों पर उलाहना देकर और उन्हें पश्चाताप करने का संदेश देकर चुप नहीं रह जाता, पर उनके पापों को देखकर वो विलाप करता और दुखी होता है, जिस प्रकार परमेश्वर का हृदय पापों को देखकर दुखी होता है। इस नबी के द्वारा परमेश्वर का हृदय प्रकट होता है। इस पुस्तक में कुछ शिक्षात्मक दृष्टांत की बातें भी पाई जाती हैं, जैसे कुम्हार और मिट्टी अध्याय 18, टूटी सुराही का दृष्टांत अध्याय 19, अध्याय 34 अंजीर की दो टोकरियां, विलाप गीत नामक पुस्तक। विलाप गीत की पुस्तक सभोपदेशक की पुस्तक के समान निराशापूर्ण बातों वाली पुस्तक है, इसीलिए हम इसे रोचक पुस्तक नहीं कहते। नए विश्वासियों के लिए आवश्यक जानकारी। विलाप गीत का शाब्दिक अर्थ होता है मृतक शरीर के दफनाए जाते समय की कविता, और यही हम पुस्तक में पाते भी हैं। इस पुस्तक का लेखन काल 586 से 585 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यही वो ऐतिहासिक समय था जब 586 ईसा पूर्व में बाबुली साम्राज्य द्वारा यहूदा राज्य का पतन हुआ था। जो दुख भरी कविताएं उस पतन के कारण गाई गईं, वे सचमुच गहरे दुख को प्रकट करती हैं। कल्पना कीजिए, यदि आप उस समय होते तो आपको कैसा अनुभव होता। बाबुली साम्राज्य आप पर आक्रमण करता, आपको बंदी बनाकर ले जाता, चारों ओर मारकाट, दुर्दशा, लूटपाट, व्यभिचार, हाहाकार, रोना पीटना होता। यदि आप इन बातों की कल्पना नहीं कर सकते तो आपको ये पुस्तक समझने में कठिनाई हो सकती है। ये पुस्तक पाप के प्रति परमेश्वर की पीड़ा को प्रकाशित करती है। पुस्तक का लेखक यिर्मयाह माना जाता है। पुस्तक की विषय वस्तु के आधार पर ऐसा सही भी लगता है। पाठक के लिए व्यवहारिक परामर्श। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अलग अलग शोक गीत प्रस्तुत करता है। पुस्तक में 5 अध्याय हैं और 5 ही शोक गीत हैं। इन शोक गीतों की रोचकता केवल मूल भाषा इब्रानी में ही देखी जा सकती है। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार की रोचकता देखने में नहीं आती। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में 22 पद पाए जाते हैं और केवल तीसरे अध्याय में 66 पद हैं। कहा जाता है कि इस पुस्तक को सावधानी के साथ कलात्मक रूप से रचा गया है। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय, जो कि पुस्तक की चरम सीमा है, इसे ध्यान से पढ़िए और यरूशलेम नगरी के विनाश का गहरा शोक अनुभव करने का प्रयत्न करिए। फिर अकाल के समय की दुर्दशा पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार स्त्रियां अपने बच्चों को खा गईं। छोटे बच्चे प्यासे मर गए, लोग तलवार से बेधे गए। इन सब बातों के होते हुए भी यिर्मयाह ये कह सका, यहोवा की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए, उसकी दया तो अनंत है। प्रति भोर को वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यहोवा मेरा भाग है, इसीलिए मेरी आशा उसी में है। जो यहोवा की बाट जोहते और उसकी खोज में रहते हैं, यहोवा उनकी भलाई करता है। कैसी अर्थपूर्ण बातें हम यहां पर देखते हैं। अक्सर हम अपने सुखी दिनों में कहा करते हैं कि परमेश्वर की करुणा व दया अनंत है, वो प्रति भोर नई होती जाती है। जी हाँ, ये बात तो सत्य है और सुखी दिनों में ऐसा कहना सरल भी होता है। पर इस पुस्तक के लेखन पर ध्यान दीजिए। वो भारी क्लेशों के बीच कह सका, उसकी दया अनंत है और यहोवा मेरा भाग है, मेरी आशा उसी में है। ये एक अति दृढ़ विश्वास का प्रमाण है। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय बड़ा विशेष अध्याय है। परमेश्वर की दया वास्तव में अनंत है। यहेजकेल नामक पुस्तक, ये एक समझने में कठिन पुस्तक है। पुस्तक के प्रारंभ से ही पाठक उलझ जाता है कि इस संसार में क्या हो रहा है। नए पाठक के लिए आवश्यक जानकारी। यहेजकेल शब्द का अर्थ है परमेश्वर सामर्थ देता है, और इस पुस्तक का रचना काल 592 से लेकर 570 ईसा पूर्व है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहेजकेल उन यहूदियों के विषय में भविष्यवाणी करता है जो बाबुली साम्राज्य द्वारा बंधुआई में चले गए थे। 606 ईस्वी पूर्व में बाबुली सेना कुछ यहूदियों को बंदी बनाकर ले गई थी। उसके बाद दूसरी बार 570 ईसा पूर्व में कुछ और लोग गुलामी में ले जाए गए। इसी समय यहेजकेल भी बंदी बनाकर ले जाया गया था और उन्हीं लोगों के बीच भविष्यवाणी करता था जो बंदी वहां मौजूद थे। उसकी बुलाहट और सेवा उन्हीं बंदियों के बीच सेवा कार्य करने के लिए थी। वो 50 से अधिक बार ये वाक्य कहता है, परमेश्वर ने मुझसे कहा। हम देखते हैं कि लोग गुलामी में हैं और क्लेश उठा रहे हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। वो वचन यहेजकेल के पास पहुंचता है और यहेजकेल वो वचन लोगों को सुनाता है। यहेजकेल की सेवकाई में दो उद्देश्य थे, पश्चाताप की पुकार और परमेश्वर पर विश्वास करना। वो कहता है, हम लोग अपने पापों का दंड भोग रहे हैं और अब समय है कि हम पश्चाताप करें। दूसरी बात वो कहता है, विश्वास करें ताकि आशा जागृत हो, परमेश्वर छुटकारा देगा, वो फिर उठा खड़ा करेगा। व्यवहारिक परामर्श। रूपरेखा। प्रारंभ में हम यहेजकेल की बुलाहट पढ़ते हैं, पहले अध्याय से 3 अध्याय, फिर यहूदा के विरुद्ध दंड की आज्ञा 4 अध्याय से 24 अध्याय, विभिन्न देशों पर दंड की आज्ञा ये हम पाते हैं 25 अध्याय से 32 अध्याय तक, और आखिर में परमेश्वर की प्रजा का छुटकारा 33 अध्याय से 48 अध्याय तक। ये पुस्तक एक चित्रों वाली पुस्तक जान पड़ती है, जिसके कारण समझने में कठिनाई आ सकती है। जो चित्र व संकेत इसमें पाए जाते हैं वे इतने मिले जुले हैं कि समझ से परे लगते हैं। संपूर्ण पुस्तक में सांकेतिक कार्य, दर्शन और दृष्टांत आदि पाए जाते हैं। इसमें मंदिर में परमेश्वर की महिमा पर बल दिया गया है। यिर्मयाह की तरह यहेजकेल के प्रचार में हम विशेष प्रभाव देखते हैं। उसने भविष्यवाणियां की, परमेश्वर ने अनेकों बातें उसे करने के लिए कही और साथ ही साथ उन बातों को करके दिखाने के लिए भी कहा, जैसा कि हम 4 अध्याय के 1, 2 और 3 पद में पढ़ते हैं। उसने करके भी दिखाया। अध्याय 4 के 4 पद से लेकर 17 पद में हम उसे एक ही करवट पर पड़ा देखते हैं। कुछ दिन बाद वो दूसरी करवट पर हो जाता है। अध्याय 5 के 1 पद से लेकर 4 पद तक उसे आज्ञा दी जाती है कि वो सिर और दाढ़ी के बाल कटवा लें। फिर अध्याय 12 के 1 से 16 में हम यहेजकेल को गुलामों में जाने का एक नाटक करते हुए देखते हैं, मानो वो गुलामी में जा रहा है। अध्याय 21 के 1-2 में उसे आहें भरने और दुख प्रकट करने की आज्ञा दी जाती है। फिर 24 अध्याय के 15 पद से लेकर 27 पद में देखते हैं कि परमेश्वर उसे बताता है कि उसकी पत्नी को वो मार देगा, पर उसे पत्नी की मृत्यु का विलाप नहीं करना होगा, न रोना होगा और न आंसू बहाने होंगे। दानियल नामक पुस्तक, नए विश्वासी के लिए आवश्यक जानकारी। दानियल का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी है। इस पुस्तक का रचना काल 6 सदी ईसा पूर्व का अंतिम भाग लगभग 535 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दानियल भी अपना देश छोड़कर बाबुल की गुलामी में ले जाया गया था, वो बड़ा बुद्धिमान युवक था। वो फारसी साम्राज्य में गुलाम बनने के लिए ले जाया गया था, पर अपनी बुद्धिमानी के कारण उन्नत किया गया और विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त हुआ। वो तीन विभिन्न साम्राज्यों के अधीन सेवा करता रहा, पहला बाबुली साम्राज्य, दूसरा मादी साम्राज्य और तीसरा फारसी साम्राज्य। दानियल ने इब्रानी और अरामी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। ये उसकी विशेषता थी और वो रचनाएं कर सकता था क्योंकि वो अपने वतन से बाहर था और उसकी इन भाषाओं में रचनाएं परमेश्वर के लोग समझ सकते थे, इसीलिए उसने इब्रानी और अरामी भाषाओं में रचनाएं की। इस पुस्तक का मूल विषय यह है कि परमेश्वर इतिहास की घटनाओं पर और पृथ्वी के समस्त राज्यों पर अधिकार रखता है। इसी कारण दारा राजा कहता है दानियल के परमेश्वर को दंडवत किया जाए। उसने इस बात की घोषणा भी करवा दी थी कि सब लोग दानियल के परमेश्वर के आगे झुकें, जो सब पर प्रभुता रखता है। रूपरेखा। इस पुस्तक के पहले 6 अध्यायों में हम व्यक्तिगत विवरण पाते हैं, फिर अध्याय 7 से 12 तक दर्शनों का वर्णन पाया जाता है। जो विवरण इन अध्यायों में है उसे हम पुराने नियम का प्रकाशन भी कह सकते हैं। इनमें अंतिम दिनों की घटनाएं पाई जाती हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए दानियल की पुस्तक बड़ी सहायता देती है। दानियल की भविष्यवाणियों में बंधुआई का समय, यरूशलेम के पतन का समय और फिर क्रिस्त के आगमन पर जाति जाति के लोगों का न्याय करने और अंत में क्रिस्त के राज्य की स्थापना की चर्चा पाई जाती है। होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्या, हागे, जकरिया व मलाकी आदि पुस्तकों की विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट से नोट्स ले सकते हैं। इन पुस्तकों की सामान्य जानकारी में आप इन विषय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दंड और आशीषें, सामाजिक न्याय, अनैतिकता, मूर्ति पूजा और सामाजिक भ्रष्टाचार। छोटे नबियों की पुस्तकों में सामाजिक भ्रष्टाचार के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, विशेषकर आमोस की पुस्तक में। इस पुस्तक में निर्धनों पर होने वाले अत्याचारों का विस्तृत विवरण पाया जाता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कार्य था। पहला भाग समाप्त और दूसरे भाग का आरंभ। पुराने नियम का सर्वेक्षण, भाग 2। इस भाग का अध्ययन करने के लिए आपके पास खुली बाइबल का होना जरूरी है। इस भाग में हम गहराई के साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें बाइबल स्थलों को देखने की आवश्यकता होगी। मैं चाहूंगा कि आप बाइबल में उन स्थलों को मेरे साथ देखें जिन्हें मैं आपसे कहूंगा। परमेश्वर ने हमें पुराना नियम अर्थात 39 पुस्तकें क्यों दी, उसका अभिप्राय क्या था, इन बातों पर हमने विचार किया। अब हम धर्म वैज्ञानिक शिक्षा के रूप में पुराने नियम पर विचार करेंगे। पुराने नियम की धर्म वैज्ञानिक शिक्षा। यदि हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि परमेश्वर ने हमें पुराना नियम क्यों दिया, तो हम इस बात को भी अच्छी तरह समझ सकेंगे कि पुराना नियम हमें क्या शिक्षा देता है। पुराने नियम को समझने का यही मूल आधार है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि यदि हम पुराने नियम को समझना चाहते हैं कि इसमें लिखी हुई बातों का अभिप्राय क्या है, किस लिए ये बातें लिखी गईं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें पुराना नियम क्यों दिया, उसका मूल उद्देश्य क्या था। परमेश्वर ने हमें पुराना नियम क्यों दिया, आप इस संबंध में क्या विचार रखते हैं? क्या इतिहास की जानकारी करने के लिए उसने पुराना नियम दिया, ताकि हम ये जान सकें कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी? हम जानते हैं कि ये उसका मूल उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उसने इसमें इतिहास की सभी बातें नहीं दी हैं, ना ही उसने पवित्र शास्त्र में वे बातें दी हैं जो इतिहास में छूट गई थी। उसने इतिहास की कुछ बातें चुनकर इसमें दी जरूर हैं, पर उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमारे पास इजरायली जाति का अच्छा इतिहास हो जिसके द्वारा हम यीशु को जान सकें। इसीलिए पुराना नियम दिए जाने का उसका मूल उद्देश्य ये नहीं था। तो फिर क्या हमारी नैतिक शिक्षा के लिए पुराना नियम दिया गया? क्या श्रेष्ठ चरित्रों का अध्ययन करने के लिए दिया गया, ताकि हम उनके द्वारा ये सीख सकें कि कैसे साहसी, बुद्धिमान और शूरवीर बना जा सकता है। क्या पुराना नियम नैतिक शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक चरित्रों का अध्ययन करने के लिए दिया गया, ताकि हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बन सके? क्या पुराना नियम हमें देने का उसका यही अभिप्राय था? इनके अतिरिक्त और भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने सामने रखकर पुराने नियम का अध्ययन करते हैं। हम अक्सर संडे स्कूलों में या बाइबल अध्ययन कक्षाओं से ही ये सीखना आरंभ कर देते हैं कि पुराने नियम की कहानी या कोई चरित्र हमें क्या शिक्षा देता है और उसका पालन हमें कैसे करना है। जब दाऊद और गोलियत की कहानी हम पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में दाऊद की तरह गोलियतों को हराना है। इसी प्रकार जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेरणा लेते हैं कि हमारा भी जीवन उसके समान विश्वासी हो। हम विभिन्न चरित्रों का जैसे जैसे अध्ययन करते जाते हैं वैसे वैसे आवश्यकता महसूस करते जाते हैं कि वैसे ही गुण हम में भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि महान चरित्रों का अनुकरण करना गलत होता है या उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाना ठीक नहीं। हमें अवश्य इन धर्मी और परमेश्वर के जनों का आदर करना और उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, पर मेरा कहना यह है कि हम सावधान रहें और उनका अनुकरण करने में जल्दबाजी ना करें। अपने जीवन की परिस्थितियों से शीघ्र ही छलांग लगाकर उनकी परिस्थितियों में ना पहुंच जाएं। परमेश्वर ने ये चरित्र हमें इस उद्देश्य से नहीं बल्कि और अधिक श्रेष्ठ व महान उद्देश्यों से दिए हैं। ये चरित्र तो इतिहास में परमेश्वर की योजना के अनुसार अद्भुत भूमिकाएं मात्र निभा रहे थे। हम अक्सर पुराने नियम के किसी चरित्र का अध्ययन करते समय अपने आप को उस चरित्र से मिलाने का प्रयत्न करते हैं। ये बड़ी रोचक बात देखने में आती है। क्या कोई ऐसा समूह होगा जो दाऊद और गोलियत की कहानी का अध्ययन करने के बाद ऐसा कहे कि उनका समूह मृत्यु से डरता है? कभी नहीं, कोई ऐसा नहीं कहेगा। आप ऐसे समूह में रहना नहीं चाहेंगे। इसी प्रकार कैन और हाबिल की कहानी पढ़ने के बाद आप कौन से समूह में रहना चाहेंगे, कैन के या हाबिल के? हम अक्सर कहानी के नायक के साथ ही अपनी तुलना करना चाहते हैं। निर्गमन अध्याय 1 में हम बालक मूसा के जन्म की कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि बालक मूसा दुख के मद में बचाया गया। कहानी पढ़कर हम तुरंत अपना मिलान कहानी से करने लगते हैं कि हम भी इसी प्रकार संकटों में बचाए जाएंगे और उन असंख्य बालकों से अपना मिलान नहीं करते जिन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो बचाए जा सकें और जो विपत्ति का शिकार हो गए। हमें क्या अधिकार है कि हम दूसरे बालकों के साथ अपना मिलान ना करें, लेकिन केवल मूसा ही के साथ अपने आप को मिलाएं? ऐसा करने से हमें पता चलता है कि हम कितनी गलत तरीके से पुराने नियम की व्याख्या करते हैं। जब तक हम ये ना जानें कि कहानी प्रस्तुत करने का मूल अभिप्राय क्या है, तब तक हमें इस प्रकार से अपना मिलान कहानी के पात्रों से नहीं करना चाहिए और ये उचित भी नहीं है। पुराने नियम का हमारे लिए केवल इतना ही महत्व नहीं है कि हम इसके द्वारा इतिहास की जानकारी प्राप्त करें। उत्तम चरित्रों का अध्ययन करके उनसे अपने जीवन की शिक्षा व मार्गदर्शन प्राप्त करें, पर इसका उद्देश्य बड़ा विस्तृत और इन बातों से कहीं बढ़कर है। निर्गमन अध्याय 1 में मूसा की कहानी लीजिए। हम इस कहानी में 3 विशेष स्तर देखते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्तर। इसमें हम वे बातें देखते हैं जो परमेश्वर मूसा के जीवन में करता है। दूसरा स्तर, राष्ट्रीय स्तर। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के लिए किस प्रकार उपाय करता है, उसकी अगुवाई करता है, ताकि वो परमेश्वर की प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर परिज्ञात देश में पहुंचा सके। तीसरा स्तर इन दोनों से श्रेष्ठ स्तर है। वो इस तरह है कि परमेश्वर किस प्रकार इस कहानी का संपूर्ण पुराने नियम के अभिप्राय के रूप में प्रयोग करता है। मैं चाहता हूं कि आप इसी संपूर्णता में उच्च स्तर के रूप में पुराने नियम को समझें। इसके मूल अभिप्राय को देखें। पुराने नियम के इतिहास के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा है। यदि ये सच है कि पुराने नियम की कहानियों का एक विशेष अभिप्राय है, तो हमें उस अभिप्राय को जानना आवश्यक है, क्योंकि उस अभिप्राय को जानने के बाद ही हम पुराने नियम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। फिर हम कहानी को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे और जो अच्छी बातें होंगी उन्हीं का पालन करने और शेष बातों को छोड़ने से बच जाएंगे। हम अक्सर कहानी का कुछ हिस्सा तो अपने लिए चुन लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हम सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे और निराश होकर नया नियम पढ़ना आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार जो बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उसे सीखने में रुकावट पड़ेगी। इसीलिए जरूरी है कि हम संपूर्ण कहानी का अभिप्राय समझें। फिर हम कहानी को अपने जीवनों पर लागू करना भी चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि जब हम इतिहास में परमेश्वर को कार्य करते देखते हैं तो अनुभव करते हैं कि जो परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करता है वही परमेश्वर हमारे जीवनों में भी कार्य करता है। यदि कोई कहानी ऐसी है जो पुराने नियम में आरंभ हुई और आज भी वो जारी है, तो हम उस कहानी के भाग होना चाहेंगे। हम उस कहानी को अपने जीवन पर भी लागू करना चाहेंगे। हम इस योग्य बनना चाहेंगे कि जो कुछ परमेश्वर इतिहास में कर रहा है वो हम पर भी लागू हो। यदि परमेश्वर संपूर्ण इतिहास में कोई कार्य कर रहा हो तो क्या आप उसे जानना ना चाहेंगे, ताकि आप उसे अपने जीवनों में लागू कर सकें। अंतिम बात, हम उन बातों का प्रचार करना चाहेंगे। हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में चारों ओर अनेकों प्रकार के विचार और मान्यताएं व शिक्षाएं आज पाई जाती हैं, जो उन शिक्षाओं से भिन्न और विपरीत होती हैं जिन्हें परमेश्वर हमें बताता है। यदि हम परमेश्वर की बातें अच्छी तरह जानते हैं तो केवल तभी इन विरोधी और विपरीत परिस्थितियों के बीच परमेश्वर की सच्चाई का, उसके अनुग्रह और उसकी सर्वोच्चता का प्रचार कर सकेंगे। यदि परमेश्वर की बातों में कुछ अभिप्राय है तो हम उसे जानना चाहेंगे और अपने जीवन पर लागू करके उसका प्रचार करना चाहेंगे। पुराने नियम का मूल अभिप्राय यह है कि वो इस बात का प्रकाशन करे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने राज्य के लोगों को छुटकारा देता है। इस अभिप्राय के दो पहलू हैं। पहला, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देता है। जब हम उत्पत्ति पर चर्चा कर रहे थे तो हमने इस शब्द पर पहले विचार किया था। परमेश्वर अपने लिए अपने लोगों को बहाल करता है। इसका अर्थ यह है कि वो अपना स्वरूप हम में उत्पन्न करता है। वो धीरे धीरे क्रिस्त के स्वरूप में हमें ढालता है। वो दोबारा हमारी सृष्टि करता है। वो हमारा उद्धार करता है। हमें पुनः नया बनाता है। उत्पत्ति अध्याय 3 के पतन से लेकर आगे संपूर्ण इतिहास में, यहां तक कि वर्तमान समय के लोगों को भी वो अपने लिए नया बनाता है और उनका उद्धार करता है। दूसरी बात, वो अपने लोगों का उद्धार अपने राज्य के लिए करता है। मैं चाहता हूं कि आप राज्य संबंधी इस परिकल्पना पर विचार करें। एक राज्य में कम से कम 3 बातों का होना आवश्यक होता है। जैसे पहला, राज्य में लोग होते हैं जिन पर राजा शासन करता है। यदि कोई व्यक्ति राजा कहलाना चाहता है तो उसके अधीन कुछ लोग तो होने ही चाहिए। प्रजा का होना भी आवश्यक है ताकि उन पर वो राज्य कर सके। हम ऐसे लोगों को पाते हैं जिन पर राजा राज्य करता है। दूसरी बात, राज्य के लिए स्थान का होना जरूरी होता है जहां राजा का अधिकार चलता है, ताकि वो ये कह सके कि मैं इस स्थान के लोगों पर राजा हूं। राजा के अधीन प्रजा होती है और उसका एक स्थान होता है जहां वो राज्य करता है। तीसरी और अंतिम बात, राजा के राज्य का एक उद्देश्य होता है। 3 बातें एक राज्य में होती हैं, प्रजा, स्थान और राजा का उद्देश्य। एक राजा द्वारा राज्य स्थापित किए जाने का अर्थ भी यही होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य के संबंध में विचार करें। हम पुराने नियम में परमेश्वर की यही कहानी पढ़ते हैं कि वो अपने लोगों को अपने स्थान पर एकत्रित करता है कि उसके उद्देश्य पूरे किए जाएं। इस अध्ययन पाठ के साथ एक नक्शा भी है, परमेश्वर का राज्य। ये नक्शों में संपूर्ण पुराने नियम की कहानी के समझने के लिए है। इसमें कुछ खाली स्थान हैं। जैसे जैसे आप भाग दो का अध्ययन करते हैं, इन खाली स्थानों को भरते चलेंगे। नक्शे के साथ साथ प्रश्न भी दिए गए हैं, जिन्हें आप वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों और अध्ययन सामग्री की सहायता से आप नक्शा भर सकते हैं। नक्शे का और अध्ययन सामग्री का अध्ययन कीजिए और मुख्य बातें आप अपनी बाइबल में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अध्ययन करना लाभदायक होगा। नक्शे के तीन खंड दिए गए हैं, लोग, स्थान और उद्देश्य। परमेश्वर अपने उद्देश्यों के पूरा करने के लिए लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करता है। नक्शे में ऊपरी बाई ओर पुराने नियम के इतिहास के क्षेत्र दिखाए गए हैं। जब आप नक्शे के नीचे जाएंगे तो आप राजतंत्र के बाद अराजकता पाएंगे, जहां कोई राज्य नहीं है। वो राज्य के विभाजन को दिखाता है, जहां वे स्वयं राज्य करते हैं और फिर देश से बाहर गुलाम बनाकर ले जाए जाते हैं। फिर आप यीशु तक पहुंचते हैं। वहां आकर आपको नक्शा समझना चाहिए। दो बातें ध्यान में रखें। पहली, ये एक निरंतर आगे बढ़ने वाली या जारी रहने वाली कहानी है। घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ा है और आगे बढ़ता है व प्रगति करता जाता है। दूसरी बात, ये नक्शा अपूर्ण नक्शा है। ये एक निरंतर उन्नतिशील रहने वाली कहानी है जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आप नक्शे में नया नियम के यीशु को वर्तमान और भविष्य के रूप में देखेंगे। पुराने नियम की कहानी कभी खत्म ना होने वाली कहानी है। इसे पूरी तरह समझने के लिए कहानी पुराने नियम में ही नहीं छोड़ सकते, इसे यीशु तक लाना होगा और वर्तमान समय के संदर्भ में इसे समझना होगा और फिर भविष्य पर लागू करना होगा। अब मैं आपको नक्शे की सहायता से इन सब क्षेत्रों का पता लगाने के लिए यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि किस प्रकार संपूर्ण पुराने नियम में परमेश्वर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने लोगों को अपने स्थान की ओर लाता है, और यही कार्य वो आज हमारे जीवनों में भी करता है। इससे आपको पता चलेगा कि पुराना नियम हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। आइए हम अदन से यात्रा आरंभ करें। हम परमेश्वर के लोगों पर उसकी अपरंपार आशीषें देखते हैं। उत्पत्ति पहले और दूसरे अध्याय में हम यही होता हुआ पाते हैं कि ये परमेश्वर के लोगों पर उसकी अति आवश्यक और सिद्ध आशीषें हैं। वे परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाते हैं। प्रतापी राजा स्त्री पुरुष की रचना समस्त सृष्टि से श्रेष्ठ प्राणी के रूप में करता है। हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता के अनुसार बनाया गया। उसकी श्रेष्ठता हम संपूर्ण सृष्टि में देखते हैं। परमेश्वर राजा है और हम उसके अधीन उसकी प्रजा हैं, और परमेश्वर ने हमें अपनी बहुमूल्य रचना के रूप में बनाया है। उत्पत्ति पहले और दूसरे अध्याय में सृष्टि निर्णय के दो वर्णन पाए जाते हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। मैं नहीं जानता कि आपने उन पर कभी ध्यान दिया है या नहीं। कृपया पहले और दूसरे अध्याय की सृष्टि निर्माण संबंधी बातों को पढ़िए। आप वास्तव में ये वर्णन अध्याय एक में पाते हैं। हम सब पहले अध्याय का पहला पद भली भांति जानते हैं, जहां ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम प्रारंभ में ही देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। जब आप दूसरे अध्याय पर आते हैं तो पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वो करता था सातवें दिन पूरा किया। फिर उसके बाद पद चार बताता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम प्रारंभ में ही देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। जब आप दूसरे अध्याय पर आते हैं तो पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वो करता था सातवें दिन पूरा किया।
फिर उसके बाद पदचार बताता है आकाश और पृथ्वी के सिर्जे जाने का, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया उसका विवरण ये है कि उस समय मैदान पर कोई पौधा पृथ्वी पर नहीं था, और इस प्रकार एक बिल्कुल भिन्न कहानी शुरू हो जाती है। क्या उस समय दो संसार थे? जी नहीं, दो संसार नहीं थे और ना ही कोई विचित्र संसार था, बल्कि हमारे पास यहाँ सृष्टि से संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। सृष्टि निर्माण संबंधी प्रथम अध्याय का वृत्तांत एक स्वाभाविक वृत्तांत है, जिसमें संपूर्ण संसार की रचना का एक एक करके वर्णन पाया जाता है, और दिन होता है, फिर रात होती है, और फिर मनुष्य की रचना श्रेष्ठ प्राणी के रूप में होती है। और जब आप अध्याय दो को पढ़ते हैं, एक दूसरी तस्वीर सामने आती है। ये सृष्टि निर्माण संबंधी भिन्न दृष्टिकोण रखती है। ये वृत्तांत मानव केंद्रित वृत्तांत है। सारा ध्यान मानव पर ही दिया गया है। इसमें ये नहीं बताया जाता कि सृष्टि में और क्या कुछ परमेश्वर ने किया। इसमें केवल वही बताया गया है जो परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जाति में किया, जो उसके अपने लोग हैं। जब आदम अदन की वाटिका में था तो वो क्या करता था? वो निरंतर परमेश्वर के प्रेम और आनंद में रहा करता था, और पूर्ण रूप से परमेश्वर की उपस्थिति का व उसके प्रेम का अनुभव करता था। परमेश्वर ने इसे देखा तो कहा अच्छा है। वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आशीषों का आनंद पा रहे थे। अब हम स्थान के विषय में विचार करेंगे। अदन की वाटिका का स्थान एक सिद्ध और पवित्र संगति का चित्र है। परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर के लोगों पर होती हैं। यहां हम एक सिद्ध संगति को देखते हैं। अदन की वाटिका स्वर्ग के समान स्थान है, जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इस स्वर्गीय और सिद्ध स्थान अदन में परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक सिद्ध संगति में रहा करता था। अदन वो स्थान है जहां सब संबंध सिद्ध होते हैं। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच सब कुछ सिद्ध होता है, और स्त्री पुरुष के मध्य भी सब कुछ सिद्ध होता है। मनुष्य और वातावरण के बीच भी सब कुछ सिद्ध है। जब कोई सिद्ध संगति में आ जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या वातावरण हो, सब कुछ सिद्ध संबंधों में ही पाए जाने लगते हैं। अदन हमारे सामने एक ऐसी ही तस्वीर प्रस्तुत करता है। उद्देश्य: परमेश्वर की महिमा सब मनुष्यों को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि ये कैसे होता है। अपनी बाइबल में उत्पत्ति उसके पहले अध्याय को पढ़िए, 26 और 28 पद में। ध्यान दीजिए कि ये पद परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों के बारे में क्या बताते हैं। यहां परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का एक स्थान है जहां उसकी महिमा सब मनुष्यों द्वारा फैलने का उद्देश्य है। उत्पत्ति एक अध्याय के 26 से आगे के वचन इस प्रकार बताते हैं, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। यहां हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाया गया, इसीलिए वो परमेश्वर की प्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके स्वरूप और समानता में सिर्जे जाने का अर्थ यही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम और हमारा चेहरा परमेश्वर के समान है। इसका अर्थ ये है कि हम समस्त सृष्टि में उसकी प्रभुता के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदन की वाटिका में यही अधिकार और प्रभुता रखने के लिए आदम और हवा को रखा गया था। मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना व उद्देश्य ये है कि वो परमेश्वर की संगति का आनंद उठाएं। परमेश्वर ने मानव को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी संगति में रहकर आनंद प्राप्त करे। साथ ही उसे समस्त सृष्टि पर अधिकार व प्रभुता करने के लिए भी उसने मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति 1:26। आप इसी बात पर बार बार जोर देते हुए देखेंगे कि आप समस्त पृथ्वी पर और सृष्टि रचना पर राज्य करेंगे। हालांकि परमेश्वर समस्त सृष्टि का राजा है, पर वो तो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के साथ अपना राज्य बांटता है, मनुष्य के साथ राज्य बांटता है और कहता है, तुम मेरे साथ साथ राज्य करोगे, तुम मेरे राज्य के भंडारी होगे और राज्य करोगे। ये बड़ा ही अद्भुत चित्र है। तीसरी बात, मनुष्यों का उद्देश्य कि पृथ्वी की छोर तक उसकी महिमा को फैलाएं। उत्पत्ति 1:28। फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। परमेश्वर के लोगों की अर्थात हमारी यही तस्वीर है जिसमें परमेश्वर की आशीषें हैं। परमेश्वर के उद्देश्यों का स्थान है सिद्ध सहभागिता व संगति, और परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए हम सिरजे गए हैं कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा प्रकट करने के लिए रचा। मेरी महिमा पृथ्वी में भर दो, सृष्टि की हर रचना में मेरी महिमा का प्रतिनिधित्व करो। यही राज्य की प्रारंभिक तस्वीर थी। मानव का पतन, उत्पत्ति 3:11 अध्याय। अदन के बाद पतन होता है और जो वहां अंधकार किसी कारण से हुआ उसके कारण सब कुछ बदल गया। आदम हव्वा के द्वारा मानव पर आशीषों के साथ दंड आ गया। अब वो स्थान एक टूटी हुई संगति का स्थान बन चुका है। अब दोनों के साथ सिद्ध संगति या मधुर संगति नहीं रह सकती, क्योंकि आदम हव्वा के द्वारा दंड आ चुका है। सब मनुष्यों में परमेश्वर की महिमा फैलाने के बदले सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर की महिमा दूषित हो गई और वे महिमा रहित हो गए। परीक्षा में गिरने के कारण परमेश्वर की जो महिमा मनुष्य में वो दूषित हो गई। उत्पत्ति 3:3-11 में इसको समझाया गया है। मैं चाहता हूं आप इसे अपनी बाइबल में पढ़ें, लोगों के बारे में सोचें और परमेश्वर की आशीषों के और दंड के विषय में विचार करें जो आदम और हव्वा के द्वारा इस धरती पर आया। परीक्षा में गिरने के दो विशेष परिणाम हुए। पहला, शुद्ध या खरा न्याय दंड सुना दिया गया, क्योंकि परमेश्वर के लिए यह असंभव था कि वो उस घृणित कार्य को बर्दाश्त कर लेता जो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना ने किया था। यह उसके पवित्र स्वभाव के विपरीत कार्य होता यदि वो आदम के पाप का दंड ना देता। यह हो नहीं सकता था कि आदम को सजा ना मिले। उसका न्याय विधान उसे पाप को अनदेखा नहीं कर सकता था। पाप में गिरने का अनिवार्य परिणाम दंड था। यह टाल देने वाली बात नहीं थी, अति आवश्यक बात थी और स्वाभाविक भी। यह गंभीर थी क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा था कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, लेकिन अगर तू आज्ञा पालन करता रहेगा तो जीवन का आनंद पाएगा। हम यहां परमेश्वर की छवि केवल लोगों की आशीषें देने वाले परमेश्वर की छवि के रूप में नहीं देखते, हम और आप दंड देने वाले के रूप में भी उसे देखते हैं। वो पाप का दंड देने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उसने आदम हवा को भी दंड दिया। दूसरी बात, हम यहां परमेश्वर का वो अनुग्रह देखते हैं जिसके योग्य मनुष्य नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पुराना नियम की सारी कहानियां उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में ही समाप्त होकर नहीं रह गईं, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रभु की स्तुति हो, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य आया और उसने अपना अनुग्रह मानव जाति पर उंडेला। दंड की घोषणा हो जाने के बाद भी अनुग्रह बाकी है। आगे जो कुछ हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर अपने राज्य में उद्धार और दंड साथ साथ और एक दूसरे का पूरक के रूप में रखता है। ये अलग अलग दो बातें नहीं रहती बल्कि एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। सब कुछ बदल जाता है। आप संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर की आशीषें और दंड देख सकते हैं। ये दोनों साथ साथ जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते। और एक बात और, साथ साथ ये कार्य भी करते हैं, वे अनंत काल तक साथ साथ रहेंगे। अब हम परमेश्वर के लोगों पर उसकी आशीषें और उसके दंड के बारे में विचार करेंगे। मैं आपको मानव जाति के विकास की दो श्रेणियों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक श्रेणी है अधर्मी लोगों की श्रेणी, जो हमें पाप और परमेश्वर के दंड को दिखाती है, और दूसरी धर्मी लोगों की। ये श्रेणी हमें परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आशीषों को दर्शाती है। उत्पत्ति अध्याय 4, जैसे ही हम खोलते हैं तो इन दोनों श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम कैन और हाबिल की चर्चा पाते हैं। पद 8 में कैन अपने भाई हाबिल से कहता है, आ हम मैदान में चलते हैं। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हम यहाँ पर आदम के पतन का अंजाम देखते हैं और पूरा अध्याय हमें कैन के वंश में पाप और अनैतिकता के विषय में बताता है। अधर्मी लोगों की श्रेणी यही है जो परमेश्वर का दंड भोगती है। लेकिन जब आप उत्पत्ति की पुस्तक के 5वें अध्याय पर पहुंचते हैं तो आपको एक अलग तस्वीर नजर आएगी। आपको सेत के वंश के बारे में वृत्तांत मिलता है, जो अपने भाई हाबिल के स्थान पर प्रकट होता है। इस 5वें अध्याय में आपकी भेंट एक धर्मी वंश से होती है, जिसे 4थे अध्याय की बातों का कोई अनुभव नहीं है। इस प्रकार आपके सामने दो श्रेणियां आती हैं, एक हाबिल या सेत की श्रेणी और दूसरी केन की। फिर ये सब जल प्रलय की ओर बढ़ते हैं, जहां आपकी मुलाकात सेत के वंशज नूह के साथ होती है। यहां ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से धर्मी श्रेणी पर परमेश्वर की आशीषें बनी रहती हैं। हम नूह पर इन आशीषों को देखते हैं। पाप का जो दंड जल प्रलय के रूप में मानव जाति पर आया, उस दंड से केवल एक धर्मी जन नूह और उसका परिवार सुरक्षित रह पाया। नूह का जन्म आदम से ठीक 10वीं पीढ़ी बाद हुआ था। फिर आप जल प्रलय की कहानी पढ़ते हैं। जल प्रलय का वृत्तांत पढ़ने के बाद आप ये पाते हैं कि परमेश्वर नूह के साथ एक वाचा बांधता है कि भविष्य में वो जल प्रलय द्वारा कभी सृष्टि का विनाश नहीं करेगा। अध्याय 9 के अंत में आप नूह के पुत्रों के बारे में, अर्थात शेम, हाम और एपेत के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। यहां मुख्य बात जो आप देखेंगे वो ये है कि फिर से मानव जाति की दो श्रेणियां आरंभ होती हैं। हाम उसी अधर्म मार्ग पर चलना आरंभ करता है जिस पर परमेश्वर का दंड पड़ा था। फिर आप शेम के बारे में अध्याय 10 के अंत तक पढ़ते हैं और 11 अध्याय तक उसका वर्णन समाप्त हो जाता है। और अध्याय 12 में आप अब्राहम नामक व्यक्ति से भेंट करते हैं। नूह का जन्म ठीक 10वीं पीढ़ी में हुआ था और नूह की ठीक 10वीं पीढ़ी के बाद अब्राहम का जन्म होता है। हम देखते हैं कि धर्मी परमेश्वर की उपस्थिति का और उसकी आशीषों का निरंतर आनंद पाते हैं, और उत्पत्ति 12 में हम फिर परमेश्वर की उपस्थिति देखते हैं। दूसरी ओर अधर्मी श्रेणी समाप्त होती जाती है। हम दोनों श्रेणियों को साथ साथ देखते हैं। इन दोनों में से एक है जो हमें अब्राहम तक पहुंचाती है। आइए अब हम फिर से दोबारा सिद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। जिस स्थान पर सिद्ध संगति थी, अब उस स्थान पर टूटी हुई संगति का चित्र नजर आता है। सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। पहले आदम और परमेश्वर के बीच में संबंध सही और सिद्ध थे, पर अब बीच में दरार आ जाती है। उत्पत्ति अध्याय 3 में मनुष्य के पतन के 3 अंजाम दिखाई देते हैं। पहला, अपराधी होने का ज्ञान होना। जब आप ध्यान से उत्पत्ति 3:7 को देखते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने पाप किया था। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। मनुष्य और परमेश्वर के बीच संबंध टूटने का कारण पाप था। दूसरी बात जो हम और आप देखते हैं वो है लज्जा। पद 8 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में उद्यान में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बगीचे में वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। वे इस बात से डर गए कि अब कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और खड़े हों। उन्हें अपने आप को छिपाना पड़ा। पद 9 में वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? तब उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। यहां पर हमने तीन बातें देखी जो आदम और हव्वा में पाई गईं। पहली शर्म या लज्जा, दूसरी पाप, और तीसरी अंत में डर। इस प्रकार आदम के पतन के कारण उस सिद्ध संगति पर ये तीन प्रभाव पड़े। संगति टूट गई, पाप आया, लज्जा आई, डर आया, और ये सब आज्ञा उल्लंघन का पाप करने के कारण हुआ। अब आदम को बगीचे से बाहर कर दिया गया, परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गया। लेकिन परमेश्वर और आदम के बीच टूटा संबंध यहीं पर खत्म होकर नहीं रह गया। स्त्री और परमेश्वर के बीच की संगति भी टूट गई। पद 3:16। इस पद में परमेश्वर स्त्री से कहता है, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यहां हम संबंध टूटने को बढ़ता हुआ देखते हैं। अंत में आप मनुष्य और वातावरण के बीच भी टूटा संबंध देखते हैं। 3:17 आदम से कहा गया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यदि आप अपनी बाइबल में मुख्य बातें लिखने के शौकीन हैं, तो मैं आपको तीन बातें लिखने की सलाह दूंगा। पहला स्थान, दूसरा मनुष्य, और तीसरा उद्देश्य। जब आप व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे तो आपको याद रखने में सुविधा होगी कि किस मनुष्य के पाप में गिरने के कारण स्थान पर बिगाड़ आ गया और मनुष्य अदन की वाटिका से बाहर हो गया। परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य को महिमा प्राप्त हो, पर महिमा भी सब मनुष्यों के लिए समाप्त हो गई। मनुष्य महिमा रहित हो गया। मनुष्य जो बन गया था, यानी ऐसा पापी मनुष्य जो परमेश्वर से घृणा करता हो, अब वो पापी रहने और घृणा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। उसका स्वभाव परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलने वाला हो गया, और यही स्वभाव संपूर्ण मानव जाति में आ गया, यानी हम सब में आ गया। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में ये परमेश्वर विरोधी स्वभाव पाया जाता है, जो आदम के पतन का परिणाम है। ये आदम से प्राप्त किया हुआ स्वभाव है जो हम सब में पाया जाता है। उत्पत्ति 11 अध्याय में हमें उन मनुष्यों की दशा दिखाई देती है जो आदम के पाप में गिर जाने के बाद मनुष्यों की हो गई थी। बाबेल की मीनार को जरा याद रखिए। सोचिए कि किस प्रकार ये घटना परमेश्वर के उद्देश्य से संबंध रखती है। परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य सारे संसार में उसकी महिमा प्रकट करे, पर जो लोग मीनार बना रहे थे उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। सोचिए कि किस प्रकार लोगों ने परमेश्वर के उद्देश्य को बिगाड़ दिया। 11 अध्याय के दूसरे पद पर विचार करें। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हम उन्हें पृथ्वी पर फैलते हुए नहीं देखते, वे वहीं बस जाते हैं। वे कहते हैं, आओ हम एक नगर और मीनार बनाएं, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार हम अपना नाम प्रसिद्ध करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। पद 3:4। हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके उद्देश्य को पूरा नहीं किया। हम यहां परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति और उसकी महिमा के संबंध में पूर्ण रूप के परित्याग और अनादर का भाव देखते हैं। सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। पहले परमेश्वर के लोग परमेश्वर के स्थान पर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे, पर अब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के स्थान पर टूटी हुई संगति में हैं। वे अदन की वाटिका से निकाल दिए गए हैं, उनमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। यहीं से कहानी बदल जाती है। परमेश्वर अपने राज्य के लिए लोगों को छुटकारा देता है, उनका उद्धार करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप आगे की बातों द्वारा इस बात को जरूर समझें। पूर्वज अध्याय 12-50। आइए अगले युग पर विचार करें, यानी पूर्वजों के युग पर। पूर्वजों के अध्ययन में हम शुरू से आखिर तक परमेश्वर की आशीषों और उसके दंड को पाते हैं। हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवनों में अंत तक इन आशीषों और दंड को देखते हैं। वे कठिन स्थानों पर भटकते फिरते तो हैं, पर उनके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा बनी रही और परमेश्वर उनके साथ भी। परमेश्वर बार बार इस बात को दोहराता रहा कि वो उनके साथ है और रहेगा। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता द्वारा अपनी महिमा सब मनुष्यों पर प्रकट करता रहा। इसी को कहा जाता है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के स्थान पर, परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से अपनी आशीषें और दंड देता है। उनके बीच संगति की प्रतिज्ञा पाई जाती थी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो अपनी विश्वास योग्यता द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। वाचा का आरंभ अब्राहम से होता है। उत्पत्ति 12 अध्याय के दूसरे और तीसरे पद में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर बारंबार कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर अब्राहम और उसके वंशजों से प्रतिज्ञा करता है। यही प्रतिज्ञा आगे 15 व 17 अध्यायों तक जारी रहती है। वो बार बार उन्हें आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3, 15 अध्याय 1 से 6 और 17 अध्याय 1 से 27 पद। परमेश्वर की प्रतिज्ञा विश्वास के द्वारा केवल अनुग्रह से ही प्राप्त की जाती है। मैं 15 अध्याय के 6 पद के द्वारा इस बात को समझाना चाहता हूं। हम पद 5 से आरंभ करते हैं और पद 6 तक देखेंगे। यहोवा ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? देख, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसकी धार्मिकता माना। उसने विश्वास किया, इसी कारण वो आशीषें प्राप्त कर सका। उससे प्रतिज्ञा की गई थी कि वो ये आशीष पाएगा। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसी कारण वो आशीषें प्राप्त करता रहा। उससे ये प्रतिज्ञा की गई कि वो ये आशीष पाएगा। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। इस तरह विश्वास के द्वारा केवल अनुग्रह से ही आशीष ग्रहण की जा सकती है। अब हम स्थान के बारे में विचार करें। उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 पद में जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है तो वो प्रतिज्ञा का स्थान ठहराता है। वो उससे कहता है, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर उससे कहता है, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब आप यहां एक देश का जिक्र पाते हैं जो उसे प्राप्त होने वाला था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञा का एक स्थान ठहराता है। परमेश्वर बार बार दोहराता है कि वो उस देश में उसके साथ रहेगा। उसने न केवल अब्राहम से यह कहा कि वो सदैव उनके संग रहेगा, पर यही बात इसहाक और याकूब से भी साथ रहने का वादा करता है। परमेश्वर ने उनसे भी यही प्रतिज्ञा बांधी जो उसने अब्राहम से बांधी थी। मैं आपको ये प्रतिज्ञाएं बताना चाहता हूं। इसके लिए आपको उत्पत्ति का 26वां अध्याय देखना होगा। वहां देखें कि इसहाक से परमेश्वर ने भूमि और स्थान के बारे में क्या कहा, उस देश या उस स्थान के बारे में क्या कहता है। दूसरा पद ये बताता है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, इसी देश में रह और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी अवश्य करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान असंख्य करूंगा। मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का तूने पालन किया। इन पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक स्थान देने पर जोर देता है और बार बार कहता है कि मैं ये सब देश तुझे दूंगा, मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूं। और यही बात हम याकूब के साथ भी देखते हैं। देखिए अध्याय 28 और पद 13-14। यहां याकूब स्वप्न में एक सीढ़ी देखता है। यहां परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण चारों ओर ये फैलता जाएगा। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। जब ये प्रतिज्ञा याकूब से की गई तब वो अकेला और अविवाहित था। उसके पास पत्नी नहीं थी तो भी वंश प्राप्त करने वाला था। याकूब के लिए ये शुभ संदेश रहा होगा कि वो सारी पृथ्वी पाने जा रहा है और सारी पृथ्वी पर उसका वंश फैलेगा। ये उसके लिए प्रतिज्ञा थी। इसके बाद हम यूसुफ का वर्णन पाते हैं। उत्पत्ति 39 में हम पढ़ते हैं कि उस समय भयंकर अकाल था और याकूब के सारे पुत्र संकट में थे। जो बुराई उन्होंने अपने भाई के साथ की थी उसके कारण वे दुखों में पड़े थे। यूसुफ अब इतने उच्च पद पर पहुंच गया था कि अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने योग्य था। उसके भाई उसके पास अनाज लेने आते हैं और उन्हें दिया जाता है। परमेश्वर की भूमि देने की प्रतिज्ञा यूसुफ के माध्यम से जारी रहती है। यूसुफ उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। 50 अध्याय के 20वें पद में यह पाया जाता है। परमेश्वर आपके संकटों या दुखों में आपके लिए क्या करता है आपको इसका पता नहीं चलता। यूसुफ के दुखों में परमेश्वर उसे सुरक्षित रखे रहा ताकि वो अपनी योजनाएं और उद्देश्य उसके द्वारा पूरी कर सके। उसकी प्रतिज्ञा याकूब के पुत्र यूसुफ में भी जीवित रही। अब हम देखेंगे उद्देश्य के बारे में। परमेश्वर की महिमा सब मनुष्यों में प्रकट हो। परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 और 3 पद में कौन सी प्रतिज्ञा की थी? जी हां, उसने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्राहिम, इजहाक और याकूब के साथ परमेश्वर विश्वास योग्य रहा और अब उसकी विश्वास योग्यता के कारण भूमंडल के सारे कुल आशीष पाने जा रहे थे। परमेश्वर बार बार इसी बात को दोहराता है कि सारी जातियां इसी तरीके से आशीष पाएंगी। ये उसकी योजना और उसका मूल उद्देश्य था। उसने इज़राइल को चुना पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो अन्य जातियों से घृणा करता है, पर उसने इज़राइल को इसलिए चुना ताकि उसके माध्यम से वो अपनी सामर्थ, अपना अनुग्रह और अपनी करुणा अन्य जातियों पर प्रकट कर सके। वे अन्य जाति लोगों तक उसका अनुग्रह पहुंचाने का जरिया बन सके, इसीलिए इज़राइल जाति चुनी गई। परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता इज़राइली जाति पर प्रकट की ताकि इज़राइल जाति उसकी महानता और गौरव अन्य जातियों पर प्रकट करे। यही एक कारण था कि उसने इज़राइल जाति को चुना। ये बात हम पर भी लागू होती है। हम भी अलग किए गए हैं। जब परमेश्वर बुलाता है तो इसी कार्य के लिए बुलाता है कि हम उसकी योजनाएं पूरी होते देखेंगे और वो विश्वास योग्य रहेगा ताकि लोग जान सकें कि वो एक भला परमेश्वर है। अपनी प्रतिज्ञा का एहसास कराने के लिए परमेश्वर एक होम बलि का उपाय करता है जिसका वर्णन हम उत्पत्ति 22 अध्याय में पढ़ते हैं। अब्राहम हमेशा पुत्र का इंतजार करता रहा। उसकी पत्नी सारा जबकि बूढ़ी हो चली थी तो भी उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो प्रतिज्ञा का पुत्र था, इसीलिए उसका नाम इजहाक था। फिर एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है, जा अपने पुत्र को होमबलि करके चढ़ा। यदि हम ध्यान के साथ इस पूरे वृत्तांत का अध्ययन करें तो हमारे सामने अब्राहम के समान बनने या उसका अनुकरण करने के संबंध में बाइबल अध्ययन करने से भाग खड़े होने की परीक्षा सामने आएगी। लेकिन अगर मैं अब्राहम को विश्वासियों का पिता ना कहूं या उसे विश्वास का आदर्श ना कहूं तो आप मेरी बात मत सुनिए। परमेश्वर ने जब अब्राहम से अपने इकलौते पुत्र को होमबलि करने की आज्ञा दी तो उसका अंतिम उद्देश्य केवल यही नहीं था कि वो बलिदान चाहता था। वो उसको परख रहा था कि अब्राहम उसका भय अभी भी मानता है या नहीं। परमेश्वर ने जान लिया कि अब्राहम सचमुच उसका भय मानता है। फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक मेढ़े का प्रबंध किया जिसे इब्राहिम ने बलि चढ़ाया। ये स्वाभाविक था कि परमेश्वर होम बलि के लिए बलि की भेड़ का उपाय आप ही करता है। परमेश्वर ने उपाय किया जिसके कारण अब्राहम का वंश आगे चलता रहा। इससे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर उपाय करता रहेगा ताकि उसकी योजनाएं और उसके लक्ष्य पूरे होते रहें। वो अपनी विश्वास योग्यता अपनी प्रजा पर दिखाता रहेगा। जब अब्राहम अपने पुत्र का बलिदान करने वाला ही था तो ठीक समय पर परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई। वो बलि के लिए एक मेढ़े का प्रबंध करने के लिए उतरा और इब्राहिम ने देखा कि एक झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा हुआ है। तब उसने उस मेढ़े को पकड़कर अपने पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ाया और आनंद करते हुए उस स्थान का नाम यहोवा एरे यानी यहोवा उपाय करेगा रखा। उसने कहा होगा, परमेश्वर सचमुच विश्वास योग्य है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और अपना उद्देश्य पूरा किया। क्या आप इब्राहिम के समान बनने की इच्छा करते हैं? ये अच्छी बात हो सकती है, पर इससे अच्छी बात यह होगी कि आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव पाएं। तो इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम को होमबलि की भेड़ का प्रबंध करके एहसास दिलाया कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। इसके बाद परमेश्वर इब्राहिम के वंश द्वारा अपने राज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा करता है। उत्पत्ति 17 अध्याय 6 और 16 पद, 35 अध्याय 11वां पद और 49 अध्याय का 9 और 10वां पद। अपनी बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 35 का पद 9 देखिए। जब हम उत्पत्ति 49 पढ़ते हैं तो देखते हैं कि याकूब अपने पुत्र यहूदा के विषय में एक आशीष वचन कहता है कि उसके गोत्र से एक राजा निकलेगा जो शासन करेगा और राज्य राज्य के लोग उसकी आज्ञा मानेंगे। उत्पत्ति 35 अध्याय के 9वें पद से 11वें में क्या घटना घटी, आइए उस घटना पर विचार करें। यहां लिखा है, फिर याकूब के पदन आराम से लौटने के बाद परमेश्वर ने दूसरी बार दर्शन देकर उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा नाम याकूब है, अब से तू याकूब ना कहलाएगा परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तो फूल फल और बढ़ जा, तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली उत्पन्न होगी और तुझसे राजा भी उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति 35 अध्याय 9 से 11 पद। इन पदों की अंतिम बात पर ध्यान दीजिए, कौन उत्पन्न होंगे? जी हां, राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर के राज्य की पूरी तस्वीर यही है, जो सारी पृथ्वी का प्रतापी राजा है। यही प्रतापी परमेश्वर अपने लोगों का प्रयोग करके उनके माध्यम से सारी जातियों पर अपनी महिमा प्रकट करेगा और अपने राज्य का प्रचार करेगा। वो इस कार्य के लिए राजाओं को उत्पन्न करेगा। जब हम प्राचीन काल के पूर्वजों का यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का अध्ययन करते हैं तो उनके जीवन काल में यही पाते हैं कि उनके माध्यम से परमेश्वर की आशीषें व शाप, उसकी उपस्थिति की प्रतिज्ञा और उसकी महिमा प्रकट हो।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सीक्रेट चर्च की तरफ से ये संदेश, जो कि ब्रुक हिल्स चर्च के डॉक्टर डेविड प्लॉट की शिक्षाओं पर आधारित था।